ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. ఆజ్ 25 అగస్ట్ 2026 హై ఔర్ ఆజ్ కే హీ దిన్ 19 సాల్ పహలే హమారీ అతి ప్రియ అతి స్నేహి మమతా మయీ మా దాదీ ప్రకాశ్ మణి జీ సంపూర్ణతా కో ప్రాప్త కర్ ఫరిష్తా బనీ. తో ఆజ్ కా దిన్ విశ్వ బంధుత్వ దివస్ కే రూప్ మే మనాయా జా రహా హై. బహుత్ హీ విశేష్ దిన్ హై. దాదీ జీ కీ విశేషతాఓ కా జితనా వర్ణన్ కరే ఉతనా కమ్. తో ఆజ్ కీ మురళీ మే, మురళీ కే బాద్ దాదీ జీ కీ 19 ముఖ్య విశేషతాఓ కా ఉల్లేఖ హై, వో భీ హమ్ సునేంగే. పహలే హమ్ బాబా కే మహావాక్య సునేంగే. కల్ బాబా నే విశేష యాద్ పర్ జోర్ దియా. యాద్ మే క్యా క్యా ఫాయదే హై వో బాబా నే బతాయే. ఆజ్ ఫిర్ బాబా ఉస్మే ఔర్ ఎడిషన్ కర్తే హై. బాబా కీ యాద్ కే సాథ్ సాథ్ వర్సే కీ భీ యాద్ హో, క్యూంకీ బాబా హమే క్యా దేతే హై. అగర్ వర్సా భీ యాద్ ఆయేగా తో బాబా సే ప్యార్ ఔర్ బడేగా. క్యా ప్రాప్తి హమే హో రహీ హై బాబా సే, తో వర్సా థోడీ భూల్నా చాహియే. తో బాప్ ఔర్ వర్సా యే దోనో యాద్ రహే తో క్యా హోగా, బాప్ కీ యాద్ సే తందరుస్తి మిలేగీ ఔర్ అమర్ బన్ జాయేంగే. వర్సా మానా అమర్, అమరత్వ కీ ప్రాప్తి. వహాం అకాలే మృత్యు హోగీ నహీ. ఇసీలియే వర్సా భీ జరూర్ యాద్ కరో తో అమరత్వ కా అనుభవ కరేంగే. మే అజర్ అమర్ అవినాశీ ఆత్మా కభీ మర్తీ నహీ, తో కభీ దుఃఖ అశాంతి కా అనుభవ నహీ కరేంగే. తో బహుత్ సుందర్ మురళీ హై ఆజ్ కీ భీ, వో సునేంగే ఔర్ ఫిర్ ఉస్కే బాద్ దాదీ జీ కీ విశేషతాయే భీ సునేంగే. ఆజ్ 25/8/2026 హై. మీఠే బచ్చే, బాప్ ఔర్ వర్సే కో యాద్ కర్నే మే తుమ్హారీ కమాయీ భీ హై తో తందరుస్తీ భీ హై. కమాయీ భీ హై ఔర్ తందరుస్తీ భీ హై. తుమ్ అమర్ బన్ జాతే హో. ప్రశ్న హై, హృదయ కో శుద్ధ బనానే కీ సహజ యుక్తి కౌన్ సీ హై? హృదయ కో శుద్ధ బనానే కీ సహజ యుక్తి కౌన్ సీ హై? ఉత్తర హై, కహాం భీ రహో ట్రస్టీ హోకర్ రహో. బాబా కే సమర్పిత బచ్చే హై, వో తో సమర్పిత హై హై. లేకిన్ పరివార్ మే రహకర్ భీ అగర్ ట్రస్టీ హోకే రహతే హై తో వో భీ సమర్పిత హీ హై. ఆజ్ బాబా నే విశేష ఇస్ పర్ జోర్ దియా హై. కహాం భీ రహో ట్రస్టీ హోకర్ రహో. అబ్ ట్రస్టీ హోనే కా క్యా మతలబ్ హై? హమేషా సమ్జో హమ్ శివ బాబా కే భండారే సే ఖాతే హై. భలే లౌకిక ఘర్ మే రహతే హై, పరివార్ మే రహతే హై, లేకిన్ వో భీ శివ బాబా కా హీ భండారా హై. హమ్ శివ బాబా కే భండారే సే ఖాతే హై. శివ బాబా కే భండారే కా భోజన్ ఖానే వాలో కా హృదయ శుద్ధ హో జాతా హై. ప్రవృత్తి మే రహతే అగర్ శ్రీమత్ ప్రమాణ డైరెక్షన్ పర్ ట్రస్టీ బన్కర్ రహతే తో వో భీ శివ బాబా కా హీ భండారా హై. మన్ సే సరెండర్ హై. తో కోయి తన్ సే సరెండర్ హై పర్ జరూరీ నహీ కీ వో మన్ సే భీ సరెండర్ హో. ఔర్ జో పరివార్ మే రహతే హై వో తన్ సే సరెండర్ నహీ హై, लेकिन मन से अगर सरेंडर है तो वो भी सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है, ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है। उन सत्संगों में तो साधु संत पंडित वही सत्संग करते हैं, वही सुनाते हैं, पर ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है। इसको कहा जाता है ये भी सत्संग है, पर इस सत्संग को क्या नाम देंगे, रूहानी सत्संग, क्योंकि रूहानी बाप सुनाते हैं तो रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रू रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। कितना वंडरफुल सत्संग है जो सुप्रीम रूह रूहों के साथ रू रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो और न ही देवताओं से सुनते हो, कोई देवता आकर के भी नहीं सुनाता है, कोई मनुष्य भी नहीं सुनाता है, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है, तभी भगवान आते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है तभी आते हैं। भगवान को हमेशा भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। निराकार भगवान कब आकर के हमें ज्ञान देते हैं, जब बाबा कहते हैं कल्प कल्प का संगम युग होता है तब निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य का ही तन आता होगा। अब श्री कृष्ण का तन भी तो मनुष्य का ही तन है, तो वही बुद्धि में आता होगा गीता सुनते समय भी। तो बाबा कहते हैं उन श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को क्या कहेंगे, हम दैवी गुण वाले बन रहे हैं तो दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे और आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो निराकार बाप किसको पढ़ाते हैं, निराकार संप्रदाय, क्योंकि बाबा तो आत्माओं को ही देखते हैं। तो निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय, अथवा और क्या नाम देंगे ईश्वरीय संप्रदाय को, रूहानी संप्रदाय। हम सब कौन बैठे हैं यहाँ, रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूहानी संप्रदाय बनते हो, रूहानी अभिमानी बनते हो, तो रूहानी संप्रदाय का आधार क्या है, रूहानी अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बाप क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये रूहों को ही पढ़ाते हैं, किसको कहते हैं मुझे याद करो, कोई शरीरों को नहीं कहते, रूहों को ही के पढ़ाते हैं, रूहों को ही कहते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि सब तो नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते, वो परम रूह है उसको भी नहीं जानते, तो रूह को भी नहीं जानते, सब नेति नेति, नहीं अंत नहीं अंत। जब तक वो ज्ञान सागर सम्मुख न आए तब तक ज्ञान कैसे समझाए। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, वो है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया है कि साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, लौकिक और पारलौकिक हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर के रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर क्या हुआ, फिर पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं ये बाप समझाते हैं। पावन थे, पतित बने, अब पतित से पावन बनना है तो कैसे बनते हैं वो बाप समझाते हैं। चित्र भी सामने हैं, है ना, जो पावन देवताएं हैं वो चित्र भी सामने हैं। तो बाबा राय देते हैं, अब क्या राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं। और सभी तो अपने को कलयुग में ही समझते हैं, किसी को पता थोड़ी है कि हम संगम युग पर बैठे हैं। हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि हम संगम युग पर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ही जानते हो कि हम संगम युग पर बैठे हैं, वो तो अपने आप को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है, अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है, तो संगम पर हम सबको ज्ञान की रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तब ही घोर सोजरा होता है। ये संगम युग है ही, कौन सा युग, कल्याणकारी युग। इस जैसा युग कोई होता ही नहीं है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, केवल यही संगम युग कल्याणकारी युग होता है। इस जैसा युग कोई होता ही नहीं, क्योंकि बाप इस युग में आते हैं, और युगों में बाप नहीं आते। सत्युग को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, हाँ, क्योंकि धीरे धीरे नीचे ही उतरते हैं ना, यहाँ से कल्याणकारी युग में है तो ये कल्याण हम ले जाते हैं सत्युग में, फिर वहां से तो उतरते ही हैं। तो सत्युग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहां किसका कल्याण नहीं होता है, वहां तो धीरे धीरे उतरते ही हैं, यहाँ ही संगम पर कल्याण होता है सबका। कल्याण तो संगम पर ही होता है, सतयुग में तो है ही कल्याण, यहाँ से ही वो कल्याण का अनुभव करके जाते हैं तो वहां तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण हो गया, हाँ कल्याण हो रहा है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा कितना कल्याण होता है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में ही तुम्हारी कमाई है। अब सत्युग त्रेता में कमाई तो नहीं करते हैं, खाते जाते हैं, तो कमाई तो इस संगम पर ही है। तो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है, अकाल मृत्यु होगी नहीं भविष्य में। तुम्हारा जीवन अमर बनता है, तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में अब सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। हाँ, चित्रों पर समझाना, चित्र तो सब जगह है, तो चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो कैसे चित्रों पर समझाना होता है। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए बाबा के पास। ये सीखना तो बहुत सहज है, चित्रों पर समझाना वो सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है। क्या आ जाता है? चित्रों को सामने, खास सृष्टि चक्र के चित्र को देखने से सामने क्या आ जाता है? संगम परम बैठे हैं, ये सामने आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है और कल की दुनिया में बहुत थोड़े होंगे। अंतर है ना, कलयुग और सतयुग में अभी कितने मनुष्य है, जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ है, और सतयुग में कितने थोड़े होंगे। कल बहुत थोड़े होंगे, इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी जो इतने बहुत है वो सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। हाँ भगवान, हम बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, रावण का देश पराया देश है ना, ये रावण का देश है, ये पराया देश है, और इस पराये देश में ही बाप आते हैं। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। देखो रावण, राम कहाँ गया? रावण के श्री लंका में गया ना, रावण थोड़ी कोई राम के देश में आ सका। वो लक्ष्मण रेखा निकाली गई तो अंदर आ ही नहीं सका, लेकिन जब सीता बाहर गई तब रावण ले गया। और फिर ऐसे नहीं कि जहाँ राम का वो डेरा दिखाते हैं वहाँ पर कोई रावण जा सका, पर राम ही रावण के देश में गया, लंका गया, और रावण पर विजय पाई। तो बाबा कहते हैं रावण का देश ये पराया देश है ना, राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस अब परवरिश हमारी बाबा कर रहे हैं, चाहे हम सरेंडर है, चाहे परिवार में लौकिक में है, तो बाबा ही हमारी परवरिश कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हम समझते हैं कि बस तुम्ही से खाऊं, अर्थात तुम्ही ही, तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, मधुबन में रहते हैं, सेंटरों पर रहते हैं, उनकी तो बाबा परवरिश करते ही हैं। लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का है, ये सब बाबा का है, भले रहते परिवार में है पर ये समझते हैं कि ये सब बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं। हाँ, दोनों युगल रूप में चलते हैं, वो भी सब दोनों बाबा के बच्चे हैं, और बच्चे लौकिक है वो भी बाबा के ही बच्चे अपने को समझते हैं, तो वो भी जैसे सब सरेंडर हैं। तो श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, तो ऐसे जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। हाँ, ऐसे कोई नहीं समझे मैं परिवार में रहता हूँ, मैं कैसे सरेंडर हो जाऊँ, लेकिन वहाँ भी सरेंडर ही अगर पूरे ट्रस्टी होकर रहते हो तो। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है, ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं, भले परिवार में रहते हैं तो भी वो भी शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से ही खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाल्य मृत्यु को नहीं पाएंगे। अकाल्य मृत्यु आएगा ही नहीं सतयुग में। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता है ये कोई भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा का भंडारा कैसे होता है, कहते तो हैं शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, लेकिन शिव का भंडारा कैसे होता है बाबा कहते कोई नहीं जानते। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अब बाबा के भले परिवार में रहते हैं पर युगल भी ज्ञान में चलता है। केवल स्त्री चले पर युगल पति न चले तो वो तो फिर भंडारा नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो समझता है मैं कमाता हूँ मैं खिलाता हूँ। परंतु अगर युगल उसका पति भी समझे कि मैं भी बाबा के भंडारे से खा रहा हूँ, तब कहेंगे भाई वो हाँ सरेंडर है। तो देखो बाबा उसका राज समझाते हैं। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, उसका युगल भी ज्ञान में चले और वो भी ये समझे कि मैं जैसे सरेंडर हूँ, बाबा के घर का ही खाता हूँ, ये बाबा का ही है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो बाबा कहते हैं मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करे, वो ज्ञान में नहीं चलता है पति। स्त्री तो ज्ञान में चलती है पर पति ज्ञान में नहीं चलता, वो कमाता है तो वो थोड़ी समझेगा कि मैं भी सरेंडर हूँ। तो पति नहीं चलता, वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करे, अब वो कैसे समझे कि मैं शिव बाबा के भंडारे से खा रही हूँ, क्योंकि कमाई तो पति की है, वो तो सरेंडर होता नहीं, वो तो अपने को बाबा का समझता नहीं है। वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए, अब पति कमाए तब तो स्त्री खाए, क्योंकि स्त्री तो कमाती नहीं, आजकल की बात नहीं है, लेकिन हाँ पति कमाए तब स्त्री खाए, तो फिर तब आमदनी तो पति की है, तो पति समझेगा ना मैं कमाता हूँ मैं, तो वो अभिमान दिखाएगा। और स्त्री भले ज्ञान में चले तो भी कहीं ऐसे तो नहीं कहेंगे ना शिव बाबा के भंडारे से खाती है। अब वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है, दोनों ही चलते हैं ज्ञान में, तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है, तब समझे समझ सकते हैं कि हाँ हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, दोनों को चलना है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं। कब तक बैठे हैं, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं, समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो, अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, कितना समय बाकी है सतयुग आने में। सतयुग में 111 से शुरू होगा तो वो 111 आने में कितना समय बाकी है, अब कितना नजदीक आ गए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे, सृष्टि चक्र का चित्र देखा तो क्या कहेंगे कि हम अभी संगम पर हैं, इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग, कल हम अपने सुख धाम में होंगे, चित्र को देख करके ये सब समझेंगे, कल हम अपने सुख धाम में होंगे। दुनिया को पता नहीं है कि हम कल सुख धाम में होंगे, ये दुनिया को पता नहीं, कल भी बाबा ने कर उनको तो हाय हाय है, पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा, पर हमें तो पता है ना क्या होगा। तो बाबा कहते हैं दुनिया को पता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं। 21 जन्मों की कमाई हम बेहद के बाप से कर रहे हैं, उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। सब स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, सत्युग में सब तो नहीं जाएंगे ना, तो ये स्वर्गवासी बनना तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है, वंडरफुल चीज है, भगवान की वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, 7 वंडर अजूबे, 7 अजूबे दिखाते हैं। अब वो 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, पर स्वर्ग क्या है, ये सबसे बड़ा वंडर है। इसका तो किसी को पता ही नहीं, वो तो कलयुगी दुनिया के 7 वंडर्स दिखाते हैं। ये तो सबसे बड़ा वंडर है, चित्र में चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। म्यूजियम में कितने सुंदर सुंदर स्वर्ग के मॉडल बनाते हैं ना, तो चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसीलिए बाबा ने लिखा था चित्र में क्या लिखना है। बाबा ने लिखा था कि ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो। चक्र में सूर्यवंशी, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, ये लिखो तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों 1250 साल, 1250 साल सूर्यवंशी, 1250 साल चंद्रवंशी, तो फिर हाँ तो आधा कल्प हो जाएगा, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाती है। लाखों वर्ष हो कैसे सकते हैं, 4 युग हैं, तो सब एक एक युग 1250 वर्ष का है, तो लाखों वर्ष का तो हो ही नहीं सकता। तो बात ही उड़ जाए जब ऐसे लिखेंगे कि 1250 वर्ष एक युग। वहां बाहुबल तो लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहां बाहुबल में कितना खर्चा होता है, क्या होगा भविष्य, लोगों को चिंता है ना, क्योंकि बहुत हथियार बना दे दिए हैं। तो वहां दुनिया में बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। कोई हथियार पवार पर सबसे जास्ती खर्चा होता है, बमों पर जास्ती खर्चा होता है, यहाँ तो वो है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। हाँ, ये जब बाबा कहते थे ना, तो हमारी बड़ी दादी जी बहुत हंसाती थी। हाँ, नया सेंटर खोलना है, क्या खर्चा है, कुछ भी खर्चा नहीं है, लेकिन लिस्ट बन जाती थी क्या क्या चाहिए नए सेंटर के लिए, इतनी लंबी लिस्ट। ये सब लिस्ट हो तभी तो नया सेंटर खुलेगा ना, भले पुराना जो नया सेंटर है उससे ही नया सेंटर बनाते हैं, लेकिन लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। फिर उस समय तो फिर अभी तो कंप्यूटर भी चाहिए, अभी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लिस्ट है। लेकिन क्यों बाबा भेंट करते कि कुछ भी खर्चा नहीं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो हथियारों का खर्चा है, इसीलिए वो तो यहाँ है ही नहीं, इसीलिए कुछ भी खर्चा नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, अगर कुछ खर्चा है भी ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है। कोई हम दूसरों से कोई डोनेशन या कुछ और तो नहीं लेते हैं ना, अपने ही घर में ही खर्चा है। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की तो बात ही नहीं है। जो हमको लोन लेना पड़े या हमको कोई डोनेशन लेना पड़े फिर वो रिटर्न करना पड़े, वो तो है ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसीलिए मकान आदि बनाते हैं। दादी जी हमेशा कहते थे कि आप अगर नया सेंटर बनाना है पहले ये निश्चित करो कितना आपके पास है, अगर जब तक वो है नहीं तब तक आप नया सेंटर कैसे बनाएंगे। ज्ञान सरोवर भी जब बना तभी भी ये प्रश्न उठा, तो कैसे दादी जी ने सब सेंटरों को लिख दिया ज्ञान सरोवर के लिए अलग भंडारी बनाओ और रोज एक एक रुपया उस भंडारी में डालो, तो ज्ञान सरोवर देखो बन गया उससे। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसीलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बच्चों का ही पैसा यूज होता आया है तो कितने दिन तो पास हो गए संगम के, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे, खर्चा कुछ भी नहीं, जीवन मुक्ति तुम बिगर कौड़ी खर्चे पाते हो, इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण फिर बहुतों को भगवान मान लेते हैं। सब भगवान हो गए तो बहुतों को भगवान मान लिया, क्यों? क्योंकि एक भगवान को नहीं जानते। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है, तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, तो बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं, इसीलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश, तो ये महाभारत लड़ाई भी साथ में है, तो भगवान भी साथ में है, तभी तो महाभारत लड़ाई माना भगवान साथ में है, तो पांडवों की जीत हुई तो फिर स्वर्ग आया, इसीलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, बाप भी कल्प 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 के संगम युग पर आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, सो भी चलो पांच युग माने, चलो संगम को नहीं जानते पर हम जानते हैं, तो चलो पांच युग हो गए, तो पांच युग हो गए उन्होंने युगे युगे लिख दिया, तो चलो पांच युग हो गए तो पांच बार आएंगे, फिर 24 अवतार, फिर फलाना अवतार, ये क्यों लिख दिया है, कितने अवतार मान लिए हैं। मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु ये सब रास्ते भगवान से मिलने के है, जो भी तीर्थ करते हैं या जो जहां भी जो भी भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं समझते ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, पर भगवान क्या कहते हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते, तो भगवान से मिलने के रास्ते कैसे हुए, क्योंकि कोई भी भगवान के पास जा नहीं सकता जब तक भगवान स्वयं ना आए। तो बाबा कहते हैं जब तो कोई भी जा नहीं सकते भगवान के पास, आधा कल्प कितना माथा मारते हैं, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, गीत भी ना जन्म 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 फेरे लगाए फिर भी हरदम दूर रहे, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया हाँ सब कुछ किया फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितने कितना नजदीक है, सामने है बाबा, है ना, बाबा के सामने बैठे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, कितना सामने है बाबा, तुम समझते हो कल्प कल्प हू बहू हम ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं आमने सामने, वो गीत भी है ना कैसे मिलते आमने सामने, हू बहू हम ऐसे मिलते हैं, तो जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही वही दादा जौहरी होगा, अगले कल्प में भी बाबा कहते यही दादा लेखराज ये जौहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे, सब कुछ वही होगा जो इस कल्प में हुआ है, और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप और तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें इतना ऊंचा दिया है जो हमें और कुछ सोचने की दरकार ही नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद दादी जी की 19 विशेषताएं हैं वो भी पढ़ेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। कल्याण कैसे है, क्योंकि हर बात में कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है। अब वो तो है ही सहयोगी, अब उनके साथ हम सहयोगी बने ये बाबा कहते महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। वो असहयोगी है फिर भी आप उसको सहयोग दो, तो ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, हमारा कहना नहीं मानता है, ये कुछ भी नहीं करता है, कोई सहयोग नहीं देता, पर हम तो उस पर अपकार तो नहीं करेंगे ना, उसका भी उपकार करेंगे। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है, कोई उसकी कमी कमजोरी इसलिए आगे नहीं बढ़ता है तो इसलिए हम भी उनको मदद करना छोड़ देंगे। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। क्रोध क्यों आता है? अंदर में स्वार्थ है, अब वो मेरी इच्छा उसने पूरी नहीं की तो गुस्सा आता है उस पर, और या तो ईर्ष्या है, वो मेरे से आगे कैसे जा सकता है। तो स्वार्थ क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। फिर क्या हो जाता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ मैं भी मदद नहीं करूंगा, मैं भी ये नहीं करूंगा, हाँ तुमने तो सहयोग दिया नहीं, तुमने उसको दिया मुझे नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो तब क्रोध खत्म होगा। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। तो क्या करो उसके लिए, पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य व्रत तो नहीं है, तो कॉमन बात है ब्रह्मचर्य, लेकिन अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है। केवल ब्रह्मचर्य में रहना ये तो बचपन की स्टेज हो गया, अभी आगे बढ़ो तो ये आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानपरस्थ स्थिति में जाना है। खाली ब्रह्मचर्य में रहना ये तो शुरुआत है, परंतु वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, ऐसे समझते हैं, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ। केवल कर्म को शुद्ध बनाया ये कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आगे वाचा, चलो वाचा को भी शुद्ध बनाया वो भी बड़ी बात नहीं है, पर संकल्प को भी शुद्ध बनाओ। फिर बाबा तो और आगे कहते हैं, संकल्प से भी आगे स्वप्न, उसको तो एकदम शुद्ध बनाओ, तब कहेंगे सच्चा ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। तो मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ अपने संकल्प को। तो चलिए अभी हम दादी जी की 19 बातें सुनेंगे। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाशमणि जी का गुप्त पुरुषार्थ, उनका गुप्त पुरुषार्थ क्या रहा। मुझे याद है एक बार दादी जी मधुबन निवासियों का क्लास करा रही थी, तो दादी जी से किसने पूछा, दादी जी आपकी कोई इच्छा है? तो दादी जी ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, 3 बार दादी ने कहा। फिर भी दादी से पूछने लगे, दादी कुछ तो इच्छा होगी, ऐसे कैसे होगा कि कुछ भी इच्छा नहीं है। तो फिर दादी सोचने लग गई, दादी ने कहा एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि बस बाबा कभी भी मुझे बुलाए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं संपूर्ण बन के जाऊं और बाबा के साथ वतन में रहूं, ये मेरी इच्छा है। ये दादी जी ने कहा, परंतु जब वतन में गई दादी अव्यक्त हुए, तो दादी जी ने बहुत जिद किया बाबा से, बाबा मैं वापस नहीं जाऊंगी, अभी तो मुझे आपके साथ ही रहना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो बाबा के साथ हो ही, लेकिन तुम विशेष सेवा अर्थ जा रही हो, तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा है इसीलिए तुम जा रही हो, बाकी तो बाबा के साथ हो ही। तो देखो ये भी कैसे वंडरफुल बाबा के साथ उनका पार्ट था। तो 19 पॉइंट्स है। पहला, दादी जी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दूसरा, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया, मनसा से भी किसी आत्मा को न दुख दिया न दुख लिया। तीसरा, दादी जी सदा एक बाप की ही आकर्षण में रही, उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, सदा एक बाप की याद में रहे अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। चौथा, सदा साक्षीपन की स्टेज में रहे सदा साथी के साथ का अनुभव किया, उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी, उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबी। पांचवा, उन्होंने किसी का अवगुण चित पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए, सदा पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त रहे, स्व चिंतन में रहे। छठा, दादी जी ब्रह्मा बाप के समान सदा निर्माण रहे, निराकारी और निरअहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया, सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं, महिमा तो स्वीकार नहीं की पर किसने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई, हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवीं बात, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा, सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मन मत व पर मत मिक्स न हो, दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प बोल और कर्म हो, यही लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। आठवां, सदा एक बल एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं, सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में बल भरा, अपकारियों पर भी उपकार किया। नौवा, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया, कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने की बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रही। दसवां, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी, कोई भी बोल साधारण बोल नहीं, उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं। ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। ग्यारवा, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने कारण इसी स्मृति में रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रहे, ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। बारवा, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी, वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही, सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। तेरवा, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्व चिंतन किया, स्व उन्नति के लिए रोज अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूढ़ियान की, बाबा के महावाक्यों का गहराई से अध्ययन किया, बाबा के साथ बाबा के मुरली से अटूट प्यार रहा। चौदवा, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देवभान से परे रहने का अभ्यास किया, उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं, हमें स्व की स्थिति ऊंची एकाग्र एक रस अथवा संकल्पों से परे निरसंकल्प बनानी है, तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। पंद्रवा, सदा इस लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रहे, सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है, कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ न दे, इसको पूरा पूरा ध्यान में रख सबके दुआओं की पात्र बनी। सोलवा, सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है, ये पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतन वासी बनना है। ये सेवाएं तो दिन रात चलती रहेगी, मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विद ऑनर बनना है। 17वां, दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रहे, एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। 18वां, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रहे अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया। पुराने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। 19वां, मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है, इसीलिए सूक्ष्म देह अभिमान को स्वयं के संस्कारों को मान शान व महिमा को बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतन वासी बन गई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये थी दादी जी की विशेषताएं।